भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। मन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितां। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादे पाश्चात्यदेशकारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीति नामिने। श्रीवार्षवानवी देवी दयिताय कृपादये कृष्णसम्बन्ध विज्ञानदायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्ज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुग भक्तिदा श्रीगौर करुणाशक्ति विग्रहाय नमस्ते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरोधाप सिद्धान्त दान्तहारिणे। नमो गौर किशोराय साक्षाद् वैराग्य मूर्तये विप्रलंबर सांबोधे पदांबुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौर विरभाग भूमेस्तम निर्देष्टा सज्जन प्रिया वैष्णव सर्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायके कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरकृषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्ते। जयतां सुरतो पंगोर मम मंद मतिर्गति मत्सर्वस्व पदाम्बोजो राधा मदन मोहनो। दिव्या वृंदारण्य कल्पद्रुमा श्रीमद् रत्नागार सिंहासनस्थो श्रीमद् राधा श्रील गोविंद देवो प्रस्तालेभिः सेव्यमानं स्मरामि। श्रीमान् राजरसारम्भे वंशी वटतटस्थिता कर्षं वेणु सुनिर्गोपी गोपीनाथ श्रियस्थिनः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
तो ये जो बाकी प्रणाम मंत्र है हाँ आप लिख लीजिए हाँ जिनको और याद होने चाहिए या तो अपनी नोटबुक में सारा पूरा मंगलाचरण हिंदी में लिख लीजिए तब आपको हर बार किताब की आवश्यकता नहीं होगी और इधर उधर एक दूसरे के मुंह देखने की आवश्यकता नहीं होगी है ना। तो ये स्वयं हमें करना चाहिए जिम्मेदारी से हाँ आलसी नहीं होना चाहिए हाँ ये छोटी सी कार्य के लिए। ये तो तीन प्रणाम मंत्र है अब इतने महीने से मैं बोल के थक गया कि वो लिख लीजिए और जब मंगलाचरण के समय किसी के पास बुक नहीं होता और कोई प्रणाम मंत्र याद नहीं हो रही है तो डे एक एक दिन के बाद हाँ सारे मंत्र जो प्रणाम मंत्र हैं तो बहुत महत्वपूर्ण प्रणाम मंत्र हैं वो याद हो जाने चाहिए। और अभी याद नहीं करेंगे तो स्वयं होकर हम नहीं करने वाले क्योंकि हमारी टेंडेंसी क्या है कि हमें पुश करने के लिए कोई ना कोई चाहिए है कि नहीं। तो आप इसको सीरियसली ले जाओ और याद करिए प्रणाम मंत्र को। आप 10 मिनट के लिए भी बैठेंगे और या कम से कम डेली हम चांट करते हैं क्लास से पहले, तो याद हो जाते हैं। लेकिन आपके पास होना चाहिए बुक या फिर आपने लिखे हुए जो प्रणाम मंत्र है, और जोर जोर से इनका उच्चारण करिए। है ना कि एक गा रहा है, दूसरा सो रहा है, तीसरा इधर उधर देख रहा है। हाँ, प्रणाम मंत्र चांट करते हैं तो उन आचार्यों की हमें कृपा मिलती है, और फिर आगे जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं उसमें जो बाधाएं हैं वो खत्म होने लगती है। इसलिए कृष्णदास कविराज ने ये दिए हैं चैतन्य चरितामृत की शुरुआत में, वो कहते गुरु वैष्णव भगवान तिनेर स्मरण तिनेर स्मर है विघ्न विनाशन। तो हर कार्य करने से पहले जो भक्त होता है उनको तीनों का स्मरण करना चाहिए, वैष्णव का, गुरु का और कृष्ण का। हाँ, और तीनों के स्मरण से क्या होता है, विघ्न विनाशन, जो भी बाधाएं आध्यात्मिक जीवन में वो खत्म होने लगती हैं, और जो इच्छा है हाँ वो पूर्ण होती है, आध्यात्मिक इच्छा। तो इस प्रकार से ये चीज़ आवश्यक है, इसको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात कि आपका समय, जैसे कल तो हम गोवर्धन परिक्रमा में थे तो काफ़ी थक गए आप, हाँ तो रिकवर करने में एक दो दिन लगेंगे आपको, हाँ लेकिन फिर भी उसके बाद आपने शेड्यूल के अनुसार रहिए, और विशेष रूप से मॉर्निंग प्रोग्राम में आप जब होते हैं, हाँ आपने चांटिंग के समय यहाँ वहाँ मत जाइए, कोई टेंपल के बाहर परिक्रमा मार्ग इधर उधर नहीं, हाँ जहाँ डिवोटीज हमारे बैठते हैं वहाँ बैठिए। आपको नींद आ रही है या एक जगह बैठने में दिक्कत है तो उधर वॉक कर सकते हैं नज़दीक, नहीं कि वॉक करने पीछे चले जाए हम, हाँ और नीचे आ जाए। और नीचे आना भी है, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आप पुनीत प्रभु को बता सकते हैं, है ना कि ये प्रॉब्लम है, तो इस प्रकार से ताकि पता चले कि भक्त क्या हुआ है। ये तो आप बीमार है, आपने किसी को बोला नहीं और नीचे आकर अकेले आप, हाँ आपको तकलीफ हो रही है, कई बार उल्टियाँ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है और कोई डिवोटी नहीं है पास, तो और ज़्यादा आपको कष्ट होगा। तो जो भी रीज़न है ना वो बता सकते हैं प्रभु जी को नीचे आने से पहले, हाँ या रेस्ट करना है या बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो अन्यथा अवॉइड करिए ये चीज़ें। ठीक, तो दूसरी चीज़ आज सुबह क्या सीखा था आपने क्लास में, क्या क्या हुआ था, एक एक पॉइंट बताइए सब डिवोटीज। हाँ यहाँ से अमित प्रभु से विकास प्रभु
मंदिर आने के बाद शरीर को दे देते हैं, जब मन मन जो अपने गुरु बन जाओ तो सबसे बड़ा मन, तो इसको अपने आप को कृष्ण बराबर नियंत्रण रहना चाहिए, तब हम अपने आप को एकदम पूरा होंगे।
सरोजित प्रभु, हाँ क्या क्यों रेस्ट कर रहे थे,
लगा कि ना उन्होंने बताया था कि जो हम जब नए नए जन्म करते हैं ना तो हमें बहुत, जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि आप जाते हैं पर हमारा मन कभी भी फिर भी फोकस होता है, सोचते हैं हम देखते हैं शर्म वहाँ खुशी है, यहाँ खुशी है ना। और उन्होंने कहा था अगर पहले तीन साल हम जो पहले दो तीन साल अगर हम सिर्फ आचरण से जिएंगे तो जो हमारी हैबिट है कंडीशनिंग हैबिट है जो पीछे देखने की ये सुधर सकती है। हमें ढंग से बुक रीडिंग करना चाहिए, चैंटिंग, मतलब पहले तीन साल जो हमारा शेड्यूल है ना उसे प्रॉपर फॉलो करना चाहिए, और क्लासेस जो हमारी हो रही है उसमें रेगुलरली आई है, और ये शारीरिक शुद्धि के लिए सबसे अच्छा पॉइंट लगा।
प्रशांत प्रभु
स्टार्टिंग में उन्होंने बताया कि जो लोग जो काम करते हैं कि ब्रह्मचारी की इम्पोर्टेंस बताई, उन्होंने बताया तीसरे के लोग होते हैं, एक तो होते हैं जो अपने माया के लिए काम करते हैं कि हमें पैसा मिले ये वो, दूसरे टाइप के लोग बताते हैं सेटिस्फेक्शन के लिए काम करते हैं, एंजॉयमेंट और सेटिस्फेक्शन के लिए। इसलिए वो किस लोग वो होते हैं जिन्हें जो काम करते हैं पर उन्हें पता होता है ट्रुथ का कि सच्चाई है कि हम एक काम कर रहे हैं बट एंड में हमें एक दिन सब छोड़ के जाना है, तो जितना ये नहीं कि हर भागते रहते हैं चीज़ें, जितना उन्हें मिल जाता है उतने में सेटिस्फाई होते हैं। मतलब ये बात बताई कि पहले 3 साल में हार्ड वर्क करना है, बहुत देख संभाल के चलना, कि स्टार्टिंग में हमारे इतने ज़्यादा फोर्सफुली हम जारी नहीं होते पूरे अच्छे तरीके से, तो हमें बहुत बच के रहना है। उसके बाद हमें फोकस रहना है, हमारे तो ऑब्जेक्टिव ध्यान में रखना है कि हमें जाना कहाँ पर, हमें इधर उधर नहीं देना। एग्जाम्पल दे घोड़े घोड़े के बांध देते हैं यहाँ पे कि उधर उधर ना दे, उससे हमें भी ऐसे चलना बिल्कुल सामने मारेगा, सामने सिर्फ हमें भगवान के आराम से इधर उधर नहीं देखना।
अजय प्रभु
कमान जब तक बस में नहीं कर पाएंगे तब तक उन भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे।
और सुभाषिष प्रभु
बोलते हैं बुद्धि का जो शुद्धिकरण है वो प्रभु पढ़ के बुक्स और भगवत गीता और छोटे छोटे बुक्स पढ़ के धीरे धीरे स्क्रिप्चर को पढ़ते हैं तो हमारा इंटेलिजेंस
शार्प प्यूरिफाइड होता है।
और फॉल्स ईगो जो प्यूरिफाइड फॉल्स ईगो को प्यूरिफाइड करने के लिए हम वैष्णव मतलब ओपेसेंस एक्सरसाइज करते हैं और जो भी सेवा दिया गया है उसको सुचारू रूप से करते हैं।
शंकर प्रभु
मुझे मानव जीवन किसी ने मिला हुआ है, हमारा लक्ष्य क्या है तो ये बता रहे थे कि जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलना है, ये तो शायद दुनिया कर रही है जो बाहर जो हम करते थे भाई अगर यहाँ भी करें इसे क्या कर रहा है क्यों आए इसे।
पंडित प्रभु
विश्व का चिंतन नहीं छोड़ पाते थे, मैं कभी कभी पहले का चिंतन होता था तो हमने दो श्लोक लिए बहुत दिखा थे वो बता रहे उसमें प्रभुपाद एक अटैच सन्यासी और डिटैच हाउस होल्डर के बारे में बता रहे हैं, एक तो कर्मेंद्रिया संयमी और निरास्तु इंद्रिया होता है। तो उसमें एक तो जैसे मित्र बताया कि मैं पहले 3 साल ब्रह्मचर्य में बहुत कठोर परिश्रम करना चाहिए उससे शरीर का शुद्धि होगी हमारी, और फिर उसके बाद जो बता रहे थे जो जो डिवोटी होता है वो मतलब जो वैसे व्यक्ति होता है वो बाहर देखता है इंडिया में बाहर देखती है विषयों को, लेकिन जो फिर डिवोटी होता है वो अपने अंदर देखता है। तो 3 साल पहले शरीर का शुद्धिकरण करना चाहिए हमें फिर मन का शुद्धिकरण करेंगे ऐसा बता रहे।
जैसे
मैं
बोतल या किसी सामान में शराब होते हैं तो उसके बाद धोने के बाद भी थोड़ा उसका स्मेल आता है
क्या? अच्छा अच्छा हाँ
स्मेल आता है, उसी तरह भी हम बहुत ही जगह से इसमें आए हैं प्रभुपाद जी के बुक के पढ़ने के लिए आया है और भगवान की भक्ति करने के लिए आया है, तो हमें 2-3 साल तक हमें जैसे शराब को धीरे धीरे बदबू खत्म होता है इसमें खत्म होती है उसी तरह हमारे भी बहुत ही इच्छा खत्म होती
है। अभिषेक और किसी को कहना है कुछ?
एक चीज़ और बताइए, हम 3 मेन थिंग हमारी कि एक जपा करना वैष्णव को सर्व करना और बुक रीडिंग करना, तीनों मतलब बता रहे कि मैं इससे क्या होता है कि हम जपा करते हम शांति के लिए करते पीसफुलनेस के लिए, ये तो पीस आते दिमाग में ये इधर उधर भागते नहीं शांति आते भगवान के द्वारा फोकस कर सकते हैं, और रीडिंग से हमारी जो मतलब प्योरिटी होती है अंदर की नॉलेज आती है नॉलेज से हमें पता चलता है असली फैक्ट है क्या, तो उससे हमारी प्योरिटी होती है, और जब वैष्णव को सर्व करते हैं हमारा ईगो खत्म होता है उससे हमारी प्राइड को हम अपनी
अहंकार को
ह्यूमिलिटी आती है।
और एक बताया था कि प्रभु जी अगर प्रभु ने बताया कि अगर हम 3 बार अगर किसी चीज़ को विषय सेंस ऑब्जेक्ट को देखते हैं ना तो हम मतलब इनसे तो जैसे वो एग्जाम्पल मुझे दिया था वो स्त्री का, तो अगर हम हाजा मिलवा दिया था वो देखा उसने पहले शो फिर कंटेम्पलेट भी करता रहा उसको, पर वो तो उसने तो एक बार देखा था कंटेम्पलेट किया, तो मुझे उस प्रोजेक्ट बता थी कि बार बार अगर देख लेना उसे तो जो हमारे थॉट्स है ना वो पक्का हम उसे शेप बार फॉर्म देंगे देंगे और फिर हमारी बॉडी इंजस्ट होता है, जिससे हम थॉट्स को अगर कंट्रोल में रखने के लिए क्या होता है कि ये जो है यज्ञ कुंड होता है आहुति इस श्रवण जो ड्यूटी से कर रहे हैं, और फिर उन्होंने बताया कि पहले 3 साल जो है ना फर्स्ट 3 ईयर्स वो हमें क्या कहते हैं वो स्ट्रिक्टली जाए
हर एक्टिविटी 2 स्टेप में होती है, पहले मन में विचारों में फिर
क्या बोला था
श्लोक का मतलब बता रहे कि जो विषय के ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे सेंस गेटिफिकेशन ऑब्जेक्ट्स हैं उनको विश की तरह त्यागना चाहिए, बिल्कुल विश समझना चाहिए वैसे त्यागना चाहिए, और शांति दया और इन सबको अमृत की तरह
त्यागना चाहिए। और
काम जो है वो कर्मचारी के लिए
यज्ञ
और आहुति
के बारे में जब आहुति कि ब्रह्मचारी ना उसे जैसे बहुत ही बाहर के लोग होते हैं ना जैसे एग्जाम्पल देता है जो चप्पल चोर करते हैं ना चप्पल चोर होते हैं उनको मारते हैं उनको कोई ऐसा नहीं होता वो आते जाते हैं उन्हें चुराना है, वैसे ही बहुत ही जगह के लोग माया ने मार रही है पर फिर भी जन्म मृत्यु के रूप में, पर जहाँ जो ब्रह्मचारी बन गया भक्त बन गया उन्हें इस पिटाई का असर पड़ता है उस सफर करते हैं वो सभी ब्रह्मचारी बच गए हैं आपका।
क्लास के लिए करते आपसे रिक्वेस्ट है क्लास बंद मत करना
क्लास
क्लास क्लास तो कंपलसरी मस्ट है, तो राधे शंभु बड़े अच्छे प्रीचर है राधानाथ महाराज। आज हम चर्चा करेंगे 3:30 बजे क्लास हो गया ठीक है। तो पिछली बार हमने एक आचार्य हम आचार्यों के बारे में चर्चा करेंगे कुछ दिनों तक, क्योंकि ये भी एक आवश्यक पार्ट है हमारे जीवन में कि हम वैष्णवों के बारे में उनकी ग्लोरीज उनकी महानता और उनका जो जीवन चरित्र है उसको सुनेंगे तो हमें भी उत्साह मिलेगा आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तो कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु अवतरित होते हैं सचिन, उनका नाम एक ये भी है सचिनंदन गौरहरी, श्री सचिनंदन गौरहरी। तो सची माता के पुत्र के रूप में भगवान प्रकट होते हैं और उनका गोरा कलर है इसलिए उनको गौरहरि कहा जाता है। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु उनका वर्णन चैतन्य चरितमृत में आता है और वो कहते हैं कि पात्रा पात्र विचार नाही नाही स्थानास्थान। पात्रा पात्र मतलब एक्चुअली वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा मूर्ख है या वो व्यक्ति विष पी रहा है जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो गिफ्ट दे रहे हैं स्वयं होकर वो गिफ्ट दे रहे हैं, और जो व्यक्ति लॉर्ड चैतन्य के दिए हुए गिफ्ट को ठुकरा देता है वो सबसे बड़ा अभाग्यशाली अनफॉर्चुनेट व्यक्ति है। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, पात्रा पात्र विचार नाही नाही स्थाना स्थान। आप क्वालिफाइड हो या अनक्वालिफाइड हो, आप ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, कोई भी हो, नाही स्थाना स्थान। तो हर एक व्यक्ति को श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये कृष्ण भक्ति प्रदान की। और किस चीज़ के द्वारा चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण भक्ति प्रदान की, तो नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने अपने साथ एक धन लाया। कौन सा धन था वो? हरिनाम।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं गोलो केरा प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। तो ये हरिनाम एक भक्त के लिए बहुत बड़ा धन है, इसलिए जो हमने अभी भजन गाया था वो उसी से संबंधित है। और पूरे भजन में चैतन्य महाप्रभु या जो भक्ति विनोद ठाकुर हैं वो हरिनाम की महानता का वर्णन करते हैं। और वो क्या कहते हैं, मुकुंद माधव यादव हरि बोले न बोलो रे वदन भरी। वो कहते वदन भर के बोलो, वदन मीन्स मुंह भर के। जैसे आज फीस्ट हुआ था तो आप सबने जिलेबी और सब भर के पाया कि नहीं, हमारा गुलाब जामुन पाते तो वदन भर जाता है, इतना बड़ा हो जाता है। तो कहते हैं महाप्रभु सुबह सुबह निकलते थे, थोड़ा सा ये चर्चा तो हट के, तो चैतन्य महाप्रभु सुबह हो जाते थे तो अपने भक्तों को साथ लेते थे और निकलते थे। चल जाएगा। चैतन्य महाप्रभु सुबह हो जाते थे तो निकलते थे, और अकेले नहीं निकलते थे, अपने भक्तों को साथ लेकर निकलते थे। आप बुक्स बंद कर सकते हैं, सॉन्ग बुक्स देखने की आवश्यकता नहीं, फिर आप सुन नहीं सकते अच्छी तरह से, है ना। तो वो गौरांग महाप्रभु सुबह सुबह निकलते थे अपने भक्तों के साथ नवद्वीप में। और ये इस चीज़ को देखकर श्रील प्रभुपाद ने ये स्ट्रीट जो हरिनाम है उसको इंट्रोड्यूस किया है। श्रील प्रभुपाद ने जो भी एक्टिविटीज़ दी हैं, जो भी चैतन्य महाप्रभु ने प्रैक्टिकल करके दिखाया है, प्रभुपाद ने अपने मिशन में उसको प्रैक्टिकल अप्लाई किया है उन सारी एक्टिविटीज़ को। तो चैतन्य महाप्रभु निकलते थे सुबह सुबह भक्तों के साथ, और भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि कई सारे भक्त होते थे और तब तक लोग सो रहे होते हैं, और लॉर्ड चैतन्य के पाँव में नुपुर होते थे। ताथई ताथई बाजल खोल, खोल का मतलब है मृदंगा, कि मृदंग की मधुर आवाज़ होती थी। तो मृदंग जैसे बाकी जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो रज और तमोगुण होता है, ढोलक तमोगुण है, और जो बाकी तबला और ये सब चीज़ें रजोगुणी है। जो हम ड्रम्स भी बजाते हैं ना, अफ्रीकन ड्रम हमारे फुल मोड ऑफ पैशन है। हाँ ये है, लेकिन जो मृदंग है ये मुझे याद नहीं शुद्ध या विशुद्ध, शुद्ध सत्व की कैटेगरी में आता है। तो ये विशेष इसकी आवाज़ है मृदंग की, लगता है कीर्तन में जब मृदंग नहीं है तो कमी महसूस होती है। तो ये कीर्तन जो मृदंग की आवाज़ होती थी और करताल बजते थे, चैतन्य महाप्रभु निकलते थे और बोलते थे, और चैतन्य महाप्रभु का अंग सोने के समान, सुबह का जो सूर्य है वो कई कौन से कलर का होता है, गोल्डन। और लॉर्ड चैतन्य का बॉडी भी गोल्डन कलर का था, गोल्डन अवतार कहते हैं महाप्रभु को। तो महाप्रभु का बॉडी चमक जाता था उससे। तो वो कहते थे मुकुंद माधव यादव हरि बोले न बोलो रे वदन भरी। कहते कि लोगो आप सो रहे हो, आपको कृष्ण का नाम कैसे लेना चाहिए, मुंह भर भर के नाम लेना चाहिए। सुबह हम भर के नाम नहीं लेते इसलिए हमें नींद आती है ना, बहुत डिफिकल्ट होता है। बल्कि आप देखेंगे कितना इजी एक्टिविटी है, चांट करना, कुछ नहीं करना, आपको ना बोझा उठाना है, ना वॉक करना है, ना सीढ़ियाँ चढ़ना है, ना सर के ऊपर कोई लेके चलना है, ना आपको टॉयलेट साफ करने हैं। आपको क्या करना है, बैठ के केवल जोर से चिल्लाना है,
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो यही एक्टिविटी करनी होती है, लेकिन बहुत कष्ट होता है उसी में। वो लगता है कि पनिशमेंट हावर्स है, वो क्या है कि 2 घंटे है पनिशमेंट का समय। हाँ, ऐसा पहले महसूस होता है हमें जाप शुरू होने से पहले, ओ कृष्णा अभी पनिशमेंट का समय आ गया। तो ये हमारी अवस्था है। महाप्रभु कहते कि बोलो, हाँ, इसलिए उत्साह होना चाहिए चांटिंग से पहले, और प्रेयर्स करने चाहिए कि मुझे कृपा करो कि मैं चांट करूँ, और चांट करें तो महाप्रभु कहते मुंह भर भर के बोलो, हाँ, बिल्कुल ये करके नहीं, मुंह को क्या करो, नाम से भरो और बोलो। क्यों, मिछे निदा बशे गेलो रे राते दिवस शरीर सजा। अरे बाबा, तुम्हारी जो रात है वो कैसे चली गई है, निद्रा, और दिन में डेकोरेट करने में, श्रृंगार करने में शरीर का जा रहा है, और फिर भी तुम्हें कुछ लज्जा नहीं महसूस हो रही है, हाँ सीरियस नहीं हो रहे हो, दिन जा रहा है रात को सोने में और दिन में बॉडी को डेकोरेट करने में। हाँ, तो इसलिए इसे ये भी सीख सकते हैं कि बाथरूम में हमें कम से कम समय लगाना चाहिए। हाँ, नहीं तो कई बार हम बहुत बहुत ज़्यादा समय घिसते रहते शरीर को। हाँ, बल्कि ये जा रहा है हमारे हाथ से, छूट रहा है, हम इस शरीर को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो कहते यमन दुर्लभ मानव देह पाइया की करो भावना के। तो इस पूरे गीत सॉन्ग में वो यही शिक्षा देते हैं कि आपका जो मूल्यवान धन है, ट्रेजर है, वो क्या है, भगवान का जो हरि नाम है। क्योंकि ये जो हरि नाम एक ऐसी चीज है जो आप अपने साथ ले जा सकते हो, या फिर इस संसार में जितनी भी चीजें हैं उनमें से कोई एक लेने वाली चीज है, कोई चीज ग्रहण करने लायक है, तो वो क्या है। हाँ, तो कहते हैं नामाश्रय करे जतने तुम्ही था कहो आपन काजे। तो कहते हैं कि 14 भुवन में एक ही चीज है जो ये हरि नाम हमें लेना चाहिए, और यही जो हरि नाम श्री चैतन्य महाप्रभु ने लाया था, और कहाँ से लाया था, तो कहते गोलो केरा प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। तो ये जो हरिनाम मूल्यवान धन है, और जिसकी तुलना चैतन्य चरितामृत में करते हैं, त्रिजगते जना छे धन रत्न मणि एक फलेर मूल्य करी तहा नाही गनी। कि ऐसा फल है कि इसके लिए आप कितना भी प्राइस धन पे करोगे तभी भी इसका मूल्य आप चुका नहीं सकते। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने ये जो मूल्यवान धन हमें दिया है हरि नाम रूपी, और इसी कारण लोचनदास ठाकुर उनको कहते हैं परम करुणा। क्या कहते हैं, ऐसी वैसी करुणा नहीं है कि अभी ठंड लग रही है किसी ने दान में वो दे दिए कंबल दे दिए, हाँ किसी ने दवाइयाँ दे दी, ऐसी करुणा नहीं। कौन सी करुणा है, विशेष करुणा है, हाँ चैतन्य, इसलिए वो परम करुणा उनको बोला गया है। तो चैतन्य महाप्रभु जब अवतरित थे जगन्नाथपुरी में, तो चैतन्य महाप्रभु का एक विशेष गुण था। महाप्रभु भगवान में तो अनंत गुण है, लेकिन उनके जीवन चरित्र में, उनकी लीलाओं में एक विशेष गुण पाया जाता था चैतन्य महाप्रभु का। वो क्या था, तो कृष्णदास कविराज कहते हैं वो एक गुण था जिसको कहते हैं, क्योंकि जो भक्त होता है वो अपने आप को सोचता है कि मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, इसलिए कृष्णदास कविराज कहते कि ये गुण एक भक्त का है, वो अपना गुणगान नहीं करता कभी, अपना अपनी प्रशंसा में नहीं लगता। तो वो कहते महानुभवेर यही सहज स्वभाव अपनार गुण नाही अपन कहा है, मतलब अपने गुण स्वयं नहीं बोलता, ये उसका स्वभाव है। तो चैतन्य महाप्रभु का एक गुण क्या था कि भक्त गुना प्रकाशिते प्रभु भाल जाने, कि भक्तों के गुणों को पकड़ते थे महाप्रभु, इस डिवोटी में ये गुण है, उस डिवोटी में ये गुण है, और उनको ग्लोरीफाई करते थे, और ये उनको बहुत आनंद आता था चैतन्य महाप्रभु का, अपने जो भक्त है उनके गुणों का गुणगान करने में चैतन्य महाप्रभु को बहुत आनंद आता था, और ये उनका विशेष गुण था। हाँ, कृष्णदास कविराज कहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, अलग अलग भक्तों के गुणों को प्रकाशित किया। तो उनमें से एक भक्त थे जिनका नाम था क्या, हरिदास द्वारा नाम महात्म्य प्रकाश। तो हरिदास ठाकुर, तो हम हरिदास ठाकुर के बारे में चर्चा करेंगे। तो हरिदास ठाकुर का गुणगान चैतन्य चरितामृत और चैतन्य भागवत में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो और किसी आचार्य के बारे में इतना शायद नहीं वर्णन किया है। लेकिन हरिदास ठाकुर ये कौन है, नामाचार्य। कौन है ये, हाँ, नाम के आचार्य हैं। और ये ऐसे अद्भुत वैष्णव थे कि जिनके जीवन चरित्र से हम कई ऐसी शिक्षाएं ले सकते हैं, और हम सीख सकते हैं कि किस प्रकार भगवान के जो नाम भजन है उसमें डिटर्मिनेशन, और जीवन में कैसे विनम्रता, टॉलरेंस और ह्यूमिलिटी, ये कैसे विकसित करनी चाहिए। या यदि कोई व्यक्ति हरे नाम का आश्रय लेता है गंभीरता से, तो उसके अंदर ये गुण स्वयं ही प्रकट होने लगते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने जो हरिदास ठाकुर से नाम महात्म्य का प्रचार करवाया। महाप्रभु ने एक ही भक्त से सारा कार्य नहीं किया, महाप्रभु क्या करते थे, अरे हर एक भक्त से अलग अलग कार्य करवाए उन्होंने। जैसे प्रभुपाद ने भी अपने शिष्यों से अलग अलग से अलग अलग कार्य किए, उतने ही प्रिय थे प्रभुपाद को सारे डिसाइपल। वैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने भी अपने अलग अलग भक्तों से अलग अलग चीजों का प्रकाश किया, और वो कहते हैं सनातन द्वारा भक्ति सिद्धांत प्रकाश। सनातन गोस्वामी के द्वारा क्या शिक्षा दी, भक्ति का सिद्धांत, फिलोसॉफी का शिक्षा। और रूप गोस्वामी श्री रूप द्वारा ब्रजेर प्रेम रस लीला, रस तत्व की शिक्षा चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी के द्वारा दी थी। और जो रामानंद राय हैं उनके द्वारा स्वयं ही महाप्रभु विनम्र हो गए, बल्कि सन्यासियों के शिशिरोमणि हैं, सर्वोच्च बड़े सन्यासी हैं, स्वयं भगवान हैं, लेकिन वो विनम्र हो जाते हैं एक गृहस्थ के द्वारा। कई दिनों तक कृष्ण कथा सुनते हैं रामानंद राय के द्वारा, और रामानंद राय से प्रश्न पूछते हैं। तो ऐसा लगता है कि चैतन्य महाप्रभु अज्ञानी हैं कृष्ण भक्ति में, और वो रामानंद राय से सीख रहे हैं। तो लॉर्ड चैतन्य ने कई स्थानों में इस चीज का प्रकाश किया है, और उन्होंने अपने भक्तों के गुणों को आगे बढ़ाया है। तो ये उनका एक गुण था, बाकी भक्तों के गुणों को चूज करना, मतलब देखना और उनकी प्रशंसा करना, उनकी ग्लोरिफिकेशन करना। ऐसा वर्णन आता है कि चैतन्य महाप्रभु के पांच पांच मुख हो जाते थे, इतना आनंद आता था उनको भक्तों के बारे में बोलने में। हमें भक्तों के गुणों के बारे में बोलने में आनंद नहीं आता, हाँ, हमारे मुख छोटे हो जाते हैं, सूख जाता है भक्त का गुणगान करने में, उनकी प्रशंसा करने में। तो ये क्या है, ये अपराध की भावना है। तो चैतन्य महाप्रभु ने इन चीज़ों की शिक्षा दी है, और इनमें से जो महत्वपूर्ण आचार्य हैं श्री हरिदास ठाकुर, जिनको नामाचार्य कहा जाता है, तो इनके बारे में हम मैं भी तीन चार दिन के लिए सुनेंगे। तो मैं सोच रहा था काफ़ी विस्तार से चर्चा करूँ, तो हमें दो तीन दिन लगेंगे हरिदास ठाकुर के बारे में। तो उनसे कई चीज़ें हम सीख सकते हैं, हाँ, और सुनने से, क्योंकि वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि इनके बारे में सुनने से क्या होगा हरिदास ठाकुर के बारे में, हाँ। तो उन्होंने हरिदास ठाकुर का वर्णन कर रहे थे वृंदावन दास ठाकुर, तो कहते कि क्या लाभ होगा हरिदास ठाकुर के बारे में सुनने से, तो कहते एवे सुन हरिदास ठाकुर एर कथा, कि कहते कि अभी हरिदास ठाकुर की कथा सुनो, कैसे आचार्य हुए हैं हमारे, कहते जहार श्रवण कृष्ण पाए बे सर्वथा, कि जिनके बारे में आप सुनोगे तो आपके हृदय में भी श्री चैतन्य महाप्रभु या कृष्ण के लिए थोड़ा सा अनुराग, थोड़ा क्या बहुत अधिक मात्रा में अनुराग विकसित होगा और आप निश्चित रूप से कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे हरिदास ठाकुर के चरित्र हैं। और कृष्णदास कविराज भी कहते हैं एक जगह, वो कहते हैं हरिदास ठाकुर शाखा अद्भुत चरित तीन लक्ष नाम ते हो लयन अपतित। मतलब वो ऐसे, उनका ऐसा डिटर्मिनेशन था कि एक दिन भी ऐसा उनके जीवन में नहीं बीता जिस दिन उन्होंने 300,000 नाम का जप नहीं किया है। इसलिए हरिदास कृष्णदास कविराज कहते तीन लक्ष नाम लय अपतित, एक होता है पतित और एक होता है अपतित। अपतित का मतलब है खंड नहीं किया, क्या नहीं किया, हाँ। तो इस प्रकार से जो ऐसे ऐसे वैष्णव हुए हैं जिन्होंने नाम जो भगवान से अभिन्न है उसको छोड़ा नहीं है, तो नाम को नहीं छोड़ना मतलब कृष्ण को नहीं छोड़ना किसी भी सिचुएशन में। जो भक्त होता है वो जानता है क्योंकि नाम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। भगवान नाम से आप दूर जा रहे हो मतलब किससे दूर जा रहे हो, कृष्ण से दूर जा रहे हो। क्योंकि इस भौतिक जगत में जो पहला मीटिंग हमारा कृष्ण से होता है तो किस फॉर्म में होता है, वो होली नेम नाम के रूप में होता है। तो इस प्रकार से हरिदास ठाकुर का वर्णन काफी स्थानों में आता है। और कृष्णदास कविराज कहते हैं प्रहलाद समान तार गुनेर तरंग जवन ताड़ाव जार नाहिक ब्रुभंग। इतना विनम्रता, इतना टॉलरेंस, कैसी इनकी सहनशीलता थी। कहते कि प्रहलाद महाराज के समान इनकी सहनशीलता थी। प्रहलाद महाराज का उदाहरण आता है ना श्रीमद् भागवतम में कि प्रहलाद महाराज को मारा जा रहा था अपने पिता के द्वारा, लेकिन कभी भी उन्होंने नारायण नाम का उच्चारण करना नहीं छोड़ा था, भगवान का नाम लेते थे कितना। और उन्होंने कुछ गालियां भी नहीं अपने पिता को दी कि क्यों मुझे मार रहे हो। तो वैसे ही हरिदास ठाकुर के जीवन में भी उसी प्रकार की लीला आती। तो भक्तगण हरिदास ठाकुर के इस विषय को स्मरण करते हैं तो उनको प्रहलाद महाराज का स्मरण होता था कि देखो, क्योंकि हरिदास ठाकुर का वर्णन आता है कि किस प्रकार उनको मारा गया और फिर भी उन्होंने अपनी भ्रुकुटी भी नहीं उठाई उस व्यक्तियों के प्रति, बल्कि इतना मारा कि जो मारने वाले हैं उनका ही हृदय क्या होने लगा, हाँ चेंज होने लगा कि कैसे ये व्यक्ति है। तो ऐसे ऐसे वैष्णव हुए हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि इतना चीप नहीं बनाना चाहिए हमें भगवत प्राप्ति कि बहुत चीप है। हाँ चैतन्य महाप्रभु की कृपा से सरल है, लेकिन महाप्रभु क्या करते हैं, हाँ परीक्षा लेते हैं, है ना। तो यही है कि रोना पड़ेगा हर एक व्यक्ति को, मत समझो कि कृष्ण बिना रोने से मिल जाएंगे, नहीं। रोना कैसे पड़ेगा, किसी कई प्रकारों से ताड़ना मिलेगी, कष्ट मिलेंगे, समस्याएं आएगी, लेकिन फिर भी भगवत भक्त इतने ये होते हैं भगवान के चरणों से, फिर भी कृष्ण के चरण वो छोड़ते नहीं हैं। हम गुरु का आश्रय में रहते हैं और उनकी सेवा में लगे रहते हैं। हाँ उनके ऊपर कितनी भी बाधाएं आती हैं फिर भी वो दूर नहीं हटते। तो ये हरिदास ठाकुर का चरित्र इसी प्रकार से है कि किस प्रकार हरिदास ठाकुर में ये विशेष अनुराग था भगवान के नामों के प्रति, और उन्होंने कैसे ये विकसित किया, और फिर चैतन्य महाप्रभु ने कैसे जीवन के अंतिम समय में उनके ऊपर कृपा की। क्योंकि हमारा सारा जो प्रयास है, हाँ दिन रात श्रवण कीर्तन सेवा धाम का भ्रमण करना, वैष्णव की सेवा करना, गुरु की सेवा करना, उसका एंड कहाँ है, एंड कहाँ है, मृत्यु के समय, अंते नारायण स्मृति। कि ये तैयारी हम कर रहे हैं इसलिए इसमें सिंसियरिटी, हाँ सिंसियर होना होगा कि मृत्यु की तैयारी आप कर रहे हो, इस स्वयं ही हमें सिंसियर होना होगा कि मृत्यु के समय भगवान मेरे ऊपर कृपा करे कि मृत्यु के समय मेरे मुख से कृष्ण नाम निकले। तो हरिदास ठाकुर ने भी वही डिजायर व्यक्त की थी, बल्कि शरीर काम नहीं कर रहा था फिर भी वो दुखी हो रहे थे कि मेरे नाम जाप नहीं हो रहा है, 3 लाख नाम नहीं हो रहे हैं, 192 राउंड्स, और उसके बाद ही वो कुछ खाते थे। तो प्रभुपाद वहां लिखते इसी प्रकार से जो कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट के जो भक्त हैं उनको भी ये भावना विकसित करनी चाहिए, हाँ उनको भी ऐसा ही दृढ़ होना चाहिए 16 राउंड्स के लिए। तो ये हमारा इस प्रकार से हम इन वैष्णव आचार्यों का जीवन चरित्र सुनते हैं या चर्चा करते हैं, और चैंटिंग से पहले हरिदास ठाकुर से प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि चैंटिंग से पहले हम हरिदास ठाकुर की जय भी बोलते हैं छोटी आवाज में, तो हर एक माला में, तो हमारा जो इंद्रियों का भ्रमण है, मन का जो भ्रमण है विषयों के प्रति, तो जय बोलने का तात्पर्य यही है कि विजय हो जाती है आपकी इंद्रिय और मन के ऊपर। हाँ, तो हरिदास ठाकुर विशेष चैतन्य महाप्रभु ने शक्ति संचारित की थी, हाँ नाम, इसलिए भगवान ने नामाचार्य बोला। तो उनके साथ और भी काफ़ी संवाद आते हैं जिनकी चर्चा हम करेंगे, और भक्तिविनोद ठाकुर ने बड़ा विशेष एक संवाद लिखा है, बल्कि वो किसी ग्रंथ में पाया नहीं जाता विस्तार रूप से, लेकिन चैतन्य महाप्रभु स्वयं ही एक दिन अपने भक्तों के साथ आते हैं स्नान करके समंदर से, और हरिदास ठाकुर को प्रार्थना करते हैं, और हरिदास ठाकुर को प्रश्न पूछते हैं कि बताओ नाम के बारे में बताओ, कैसे चांटिंग करना चाहिए, क्या अपराध है। तो हरिदास ठाकुर सारे महाप्रभु को कहते हैं कि आप तो सबके ज्ञाता हो, हाँ मैं तो मूर्ख हूँ, मैं नहीं जानता हरि नाम के बारे में, हाँ क्योंकि आप हरि नाम संकीर्तन का प्रचार या हरि नाम देने के लिए आए हैं, लेकिन यदि आप मुझे कहने के लिए कह रहे हैं बताने के लिए, हाँ मैं तो वो इंस्ट्रूमेंट हूँ और आप सूत्रधार हैं, वो गुड़ियों का होता है ना, क्या कहते हैं कठपुतली, हाँ वो क्या कहते हैं धागा, धागे से नचवाते ना, तो हरिदास ठाकुर कहते मैं वैसा ही हूँ, मेरा तो हरि नाम में अनुराग ही नहीं है, ऐसा कहते थे हरिदास ठाकुर। हाँ और कहते यहाँ आप यदि कृपा करेंगे हाँ तभी मैं कुछ नाम के बारे में बोल सकता हूँ। तो इतनी विनम्रता से जब चैतन्य महाप्रभु की ये खासियत थी उनके भक्तों की, और जब महाप्रभु देखते थे कि भक्त में विनम्रता आ रही है तो लॉर्ड चैतन्य का हृदय कांपने लगता था। हरिदास रूप सनातन के बारे में हम पढ़ते हैं कि इतने विनम्र हो गए रूप और सनातन गोस्वामी, तो महाप्रभु को बोलना पड़ा कि अभी प्लीज आपकी रोकिए विनम्रता को, हाँ कि मेरा हृदय कांप रहा है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मध्य लीला में आता है, तो वैसे हरिदास ठाकुर के बारे में, तो जैसे ही विनम्रता गुण हमारे हृदय में आने लगता है या किसी भक्त में आ रहा है, जैसे मैंने कहा था कि समझना चाहिए कि उसके ऊपर किसकी कृपा शुरू हो गई है, श्री चैतन्य महाप्रभु की, ये लक्षण है भक्त का, तो ये बहुत आवश्यक है। और यदि हम हरिनाम सिंसियरली और ईमानदारी से करते हैं तो निश्चित रूप से ये गुण हमारे हृदय में प्रकाश करने लगते हैं, और उसी के लिए हम यहाँ हैं, है ना। ये सब हम हेड शेव करना, सैफ्रॉन धारण करना, हाँ और बाकी सारी सेवाओं में लगना, शास्त्र पढ़ना, धाम का भ्रमण करना, लेक्चर सुनना, लेक्चर देना, इनका क्या उद्देश्य है कि ये गुण हमारे अंदर स्वाभाविक रूप से आ जाए। और कोई व्यक्ति सिंसियरली लगता है गुरु के आदेशानुसार सेवा में और श्रवण कीर्तन में, तो निश्चित रूप से इन गुणों का जो उदय है उसके हृदय में होने लगेगा, और हृदय से सब जगह फैलेगा, मतलब उसके वाणी में, उसके चलने में, उसके बिहेवियर में, सब एक्टिविटीज में प्रकाश होगा। तो आज तो समय नहीं है, लेकिन हरिदास ठाकुर की चर्चा कल भी नहीं कर सकता, कल मुझे वृंदावन जाना पड़ रहा है, परसों हम करेंगे सुबह और दोपहर दोनों समय, हाँ तो कुछ सुनेंगे हरिदास ठाकुर के बारे में, और फिर जो भी चीज़ हम सुनते हैं आप मेडिटेट करें कभी समय मिलता है। तो मेडिटेट मीन्स अपने नोट्स को पढ़े हम, वैसे ही नहीं स्मरण हो रहा है, इसलिए आवश्यक है लिखते रहना हर समय, हाँ, ताकि हम कभी बैठ के पढ़ सकते हैं और या दूसरे भक्त से शेयर कर सकते हैं, सुना सकते हैं। क्योंकि वैष्णव के बारे में बोलना इससे बहुत अधिक प्योरिफिकेशन होने लगता है हमारे हृदय में, या उनके बारे में सुनना। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि मैं लिख रहा हूँ इनका चरित्र क्योंकि मेरा प्योरिफिकेशन हो रहा है। वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं उनका क्या प्योरिफिकेशन, तो ये आवश्यक है। तो इन आचार्य ने शिक्षा दी है कि हमें सुनना चाहिए अधिक से अधिक और उनके बारे में चर्चा करनी चाहिए। यदि हम सुनेंगे तभी हम उनका गुणगान कर सकते हैं, है ना। पढ़ना ही एक सुनना है, प्रभुपाद कहते थे, क्योंकि प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ना भी क्या है, प्रभुपाद से सुनना ही है। एक प्रकार से प्रभुपाद ने बोल के लिखी है किताबें, है ना, डिक्टेशन दिए हैं डिक्टाफोन से। तो हरिदास ठाकुर का चरित्र हम फिर से कंटिन्यू करेंगे परसों। श्री हरिदास ठाकुर की, चैतन्य महाप्रभु की, हृदय गौर प्रेमानंदे।
नामाचार्य के,
हाँ।